नमस्कार भारत, गुरुवार 12 जनवरी, मैं हूं निखिल रंजन। अमेरिका के नव निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस, निशाने पर अमेरिकी खुफिया एजेंसियां।
They looked at that nonsense that was released by maybe the intelligence agencies. Who knows?
भारत में नोटबंदी को लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर उठाए सवाल, क्या कांग्रेस को इस विरोध का फायदा चुनावों में मिलेगा, करेंगे विश्लेषण। संयुक्त राष्ट्र ने साइप्रस के एकीकरण के लिए तेज की कोशिशें, कितना मुश्किल है दो हिस्सों में बटे द्वीप का एक होना।
इसके पास दो बड़े देश हैं, टर्की और ग्रीस। जो बहुमत के लोग हैं वो ग्रीक हैं, ईसाई हैं। करीबन 300 साल इसका शासन टर्की ने किया और उसके बाद अंग्रेज आए।
अखबारों की समीक्षा के साथ खबरें होंगी और भी, लेकिन पहले प्रमुख विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, दिलनवाज पाशा से। अमेरिका का राष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद से अपनी पहली प्रेस वार्ता में डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी खुफिया एजेंसियों और मीडिया पर निशाना साधा है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने देश की ही खुफिया एजेंसियों को उस विवादास्पद दस्तावेज के लीक होने के लिए जिम्मेदार ठहराया है, जिसमें कहा गया है कि रूस के पास ट्रंप के खिलाफ आपत्तिजनक जानकारी हो सकती है। ट्रंप ने इस दस्तावेज को बिल्कुल बेबुनियाद और झूठा करार दिया है। खुफिया एजेंसियों ने बीते सप्ताह राष्ट्रपति ओबामा और डोनाल्ड ट्रंप को इन आरोपों के बारे में जानकारी दी थी। ट्रंप ने मीडिया संस्थानों पर भी फर्जी खबरें प्रकाशित करने के आरोप लगाए। ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बेहतर रिश्तों की उम्मीद भी जाहिर की। उन्होंने ये भी कहा कि अमरीका का अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में सम्मान पहले से बढ़ेगा। उन्होंने कहा, या तो हम साथ चलेंगे या नहीं। मैं उम्मीद करता हूं कि हम साथ मिलकर चलें, और ऐसा भी मुमकिन है कि हम साथ न चलें। लेकिन रूस और अन्य देश, जिनमें चीन भी शामिल है, चीन जो आर्थिक तौर पर हमारा फायदा उठाता रहा है और जिसने दक्षिण चीन सागर में भी हमारा फायदा उठाते हुए किलेबंदी कर ली है, रूस, चीन, जापान, मैक्सिको, सभी देश हमारा पहले से ज्यादा सम्मान करेंगे, जितना इस प्रशासन में कर रहे हैं उससे तो कहीं ज्यादा। वहीं मैक्सिको के राष्ट्रपति एनरिके पेना नीटो ने फिर दोहराया है कि उनका देश अमेरिका और मैक्सिको के बीच राष्ट्रपति निर्वाचित डोनाल्ड ट्रंप की प्रस्तावित दीवार पर कोई खर्च नहीं करेगा। अपनी प्रेस वार्ता में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वो चाहते हैं कि ये दीवार बनाने का काम तुरंत शुरू हो और मैक्सिको इस पर आने वाला खर्च बाद में अमेरिका को चुका दे। अमेरिका का विदेश मंत्री बनने के लिए डोनाल्ड ट्रंप की पहली पसंद रेक्स टिलरसन ने सीनेट की अनुमोदन समिति के समक्ष सुनवाई में कहा है कि वो परमाणु प्रसार पर डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी का समर्थन नहीं करते हैं। ट्रंप ने कहा था कि जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों का अपनी रक्षा के लिए परमाणु हथियार विकसित करना गलत नहीं होगा। लेकिन सुनवाई के दौरान टिलरसन ने कहा है कि अमेरिका दुनिया में परमाणु हथियारों की संख्या कम करने की अपनी प्रतिबद्धता से पीछे नहीं हट सकता है। उन्होंने चीन की आलोचना करते हुए कहा है कि वह दक्षिण चीन सागर में द्वीप बनाना बंद करे। जर्मन कार निर्माता कंपनी फॉक्सवैगन ने अमेरिका में अपनी डीजल कारों में प्रदूषण का स्तर कम बताने के लिए अवैध सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करने का अपराध कबूल कर लिया है। कंपनी अब $4.3 अरब तक का जुर्माना अदा करेगी। इस स्कैंडल में शामिल होने के आरोप में कंपनी के 6 वरिष्ठ अधिकारियों पर मुकदमा भी चलाया जा रहा है। अमेरिका की महाधिवक्ता लोरेटा लिंच का कहना है कि फॉक्सवैगन ने तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया, जानकारियां छुपाई और अंततः अपने कृत्यों पर पर्दा डालने के लिए झूठ बोला। इस समझौते के साथ अमेरिका में फॉक्सवैगन के इस स्कैंडल पर अब तक कुल खर्च लगभग $9 अरब हो गया है। यूरोप में भी इसे लेकर कई मुकदमे अभी लंबित हैं। महाधिवक्ता लोरेटा लिंच ने बताया, समझौते के तहत फॉक्सवैगन को $4.3 अरब का जुर्माना चुकाना होगा। ये वातावरण को लेकर हासिल किए गए सबसे बड़े जुर्मानों में से एक है। साथ ही उन्हें भविष्य में उल्लंघन न हो, इसके लिए भी कदम उठाने होंगे। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत। बीबीसी रेडियो पर गुरुवार की पहली सभा में आपका स्वागत है। आज आपके साथ मैं निखिल रंजन। उत्तर भारत में लोग ठंड का सामना कर रहे हैं, लेकिन राजनेताओं के बयानों से गर्मी महसूस हो रही है अमेरिका में। नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस दौरान तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखने की कोशिश की। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो सबसे ज्यादा याद रहा वो रूसी राष्ट्रपति के साथ उनके रिश्तों पर लगते आरोप और अमरीकी खुफिया एजेंसियों के निशाने पर लेना। साथ ही CNN के एक पत्रकार को झड़क भी दिया उन्होंने। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप पर कुछ आरोप लग रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि इन आरोपों के तार अमरीकी खुफिया एजेंसियों से जारी किए गए दस्तावेजों में हैं। जाहिर है कि ट्रंप को ये नागवार गुजरा है और उन्होंने खुफिया एजेंसियों की ओर तल्खी से इशारा करते हुए कहा है,
I want to thank a lot of the news organizations here today because
मैं बहुत सारे मीडिया संस्थानों को धन्यवाद देना चाहता हूं जो यहां हैं, क्योंकि उन्होंने उस बेकार की चीज़ को देखा है जो शायद खुफिया एजेंसियों ने जारी किया था, कौन जानता है। लेकिन शायद इंटेलिजेंस एजेंसियों के रिकॉर्ड पर यह बड़ा धब्बा होगा अगर उन्होंने ऐसा किया होगा, क्योंकि इस तरह की बातें कभी नहीं लिखी जानी चाहिए, ऐसा कभी नहीं हुआ होगा और निश्चित रूप से ये कभी भी जारी नहीं की जानी चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बीबीसी संवाददाता ब्रजेश उपाध्याय की भी नजर थी। आइए चर्चा में उन्हें भी शामिल करते हैं सीधे वॉशिंगटन से। ब्रजेश, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे सीधे खुफिया एजेंसियों का नाम लिया है, उन्होंने CNN के एक पत्रकार को भी सवाल नहीं पूछने दिया, क्या बात है? वो इतने नाराज क्यों है? ये उनकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, क्या कहा सुना गया?
देखिए, जो एक दस्तावेज कल जारी हुआ कुछ मीडिया एजेंसियों की, मीडिया जो संस्थान है उनकी तरफ से, उनको लेकर ट्रंप बेहद नाराज हैं और उन्होंने उस दस्तावेज को बिल्कुल बेबुनियाद और झूठा करार दिया है। खास तौर से उनकी गाज, जैसा कि आपने कहा, गिरी CNN पर, जिसने इस खबर को एक तरह से ब्रेक किया था कल शाम, और बजफीड वेबसाइट पर, जिसने पूरा का पूरा दस्तावेज छाप दिया। इन दस्तावेजों में कहा गया है कि रूसी अधिकारियों के पास एक ऐसी वीडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है जिनमें ट्रंप को वेश्याओं के साथ देखा गया है, साथ ही उनके कारोबार के बारे में भी ऐसी जानकारी है जो उनके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। और ट्रंप ने कहा कि जिस तरह के आरोप हैं इन दस्तावेज में वो बिल्कुल बेबुनियाद हैं, क्योंकि वो जब भी देश से बाहर जाते हैं तो अपने स्टाफ को भी हिदायत देते हैं, खासतौर से कि होटलों में अक्सर छोटे छोटे कैमरे लगे होते हैं जिनका पता भी नहीं चलता, और कोई ऐसी हरकत ना करे जो देर रात के टेलीविजन पर नजर आए, और ऐसे में वो खुद इस तरह की हरकत कैसे कर सकते हैं। और दस्तावेज के अनुसार ये मामला 2013 का है, जब वो रूस में मिस यूनिवर्स समारोह के लिए मौजूद थे, और तभी से रूसी हुकूमत कहा जा रहा है कि उन्हें एक तरह से ब्लैकमेल कर रही है। रूस ने भी इस खबर का जोरदार खंडन किया है, और यहाँ स्पष्ट करना होगा कि इस खबर की पुष्टि कहीं से स्वतंत्र रूप से और नहीं हुई है।
ब्रजेश, डोनाल्ड ट्रंप ने जिन दस्तावेजों की बात की है या मीडिया जिसकी चर्चा कर रहा है, वो दस्तावेज आखिर आए कहां से?
देखिए, ये दस्तावेज ब्रितानी खुफिया एजेंसी MI6 के एक पूर्व एजेंट ने एक निजी सिक्योरिटी एजेंसी के लिए काम करते हुए जुटाई थी, और उनका नाम है क्रिस्टोफर स्टील। अक्टूबर से ही कई मीडिया संगठनों के साथ साथ बीबीसी के पास भी ये दस्तावेज थे, लेकिन इनकी पुष्टि नहीं हो पा रही थी और अभी भी नहीं हुई है, तो किसी ने प्रकाशित नहीं की इसे। लेकिन जब अमरीकी खुफिया एजेंसियों ने इस पर एक दो पन्नों का सिनॉप्सिस बनाकर राष्ट्रपति ओबामा और डोनाल्ड ट्रंप के सामने पेश किया, तो जाहिर था कि ये एजेंसियां इसे गंभीरता से ले रही हैं, और ये बात लीक हो गई कि उन्होंने ये पेश किया है, तो कल शाम से इसकी रिपोर्टिंग शुरू हो गई और ट्रंप बिल्कुल आक्रामक मुद्रा में नजर आए हैं, और ट्विटर पर अपने राजनीतिक विरोधियों को कोसा है उन्होंने, और खुफिया एजेंसियों को भी निशाना बनाया है कि इस फेक न्यूज को या फर्जी न्यूज जिसे वो कह रहे हैं वो बाहर कैसे निकला। लेकिन गौरतलब है कि हिलरी क्लिंटन के खिलाफ इसी तरह के फेक न्यूज का उन्होंने खासा इस्तेमाल किया था, और अब अगर ये खबर अगर साबित नहीं भी होती है तो एक तरह से वो खुद इसकी चपेट में आए हैं।
डोनाल्ड ट्रंप ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसके अलावा और किन मुद्दों की चर्चा की है, क्या कहा है उन्होंने?
देखिए, ट्रंप ने अपने चुनावी अभियान के दौरान मेक्सिको की सीमा पर बार बार दीवार बनाने की बात की थी और कहा था कि मेक्सिको उसका पैसा भी मेक्सिको से ही लेंगे, तो उन्होंने अपने उस वादे को दोहराया और कहा कि दीवार का काम जल्द से जल्द शुरू होगा, और किसी न अब वो कह रहे हैं कि किसी न किसी रूप में इस पर आने वाला खर्च भी मेक्सिको को ही उठाना होगा। जो विवादास्पद बात बन रही है कि चर्चा इस बात की कि हो सकता है कांग्रेस से वो इसका पैसा मांगे और कहें कि हम मेक्सिको पर इस तरह का टैक्स लगाएंगे कि ये पैसा वापस आ जाए। साथ ही उन्होंने अपने सारा कारोबार अपने दोनों बेटों के हवाले करने का भी ऐलान किया और कहा कि राष्ट्रपति पद पर रहते हुए अपने बिजनेस से किसी तरह का संबंध नहीं रखेंगे। साथ ही जब तक इस पद पर रहेंगे उनकी कंपनी विदेशों में कोई निवेश या डील नहीं करेगी, क्योंकि सवाल उठ रहे थे कि आप कैसे इतना बड़ा बिजनेस चला सकते हैं और राष्ट्रपति भी बन सकते हैं, क्योंकि एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आएगा सामने। और साथ ही स्वास्थ्य सेवा से जुड़े कानून ओबामा केयर को जल्द से जल्द खत्म करने की बात की है उन्होंने।
जी ब्रजेश उपाध्याय वॉशिंगटन से बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। बीबीसी रेडियो पर आप सुन रहे हैं आज की पहली सभा। नमस्कार, भारत निखिल रंजन के साथ, और आइए अब रुख करें भारत का। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि 1000 और 500 के पुराने नोट बंद करना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का व्यक्तिगत फैसला था और इसे एक संस्थान के तौर पर भारतीय रिजर्व बैंक की प्रतिष्ठा को धक्का पहुंचा है। राहुल गांधी ने दावा किया कि मोदी सरकार अच्छे दिन का वादा करके सत्ता में तो आ गई, लेकिन भारत में अच्छे दिन तभी आएंगे जब साल 2019 में कांग्रेस सत्ता में आएगी। एक रिपोर्ट के साथ संदीप सोनी।
मित्रों, अपने जेब में हाथ डालो। सबने अपने जेब में हाथ डाला। ये जो तुम्हारे जेब में 500 1000 रुपए का नोट है, अब ये कागज हो गया, कागज।
लंदन में छुट्टी मनाकर लौटे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार पर हमलावर नजर आए। उन्होंने मोदी सरकार पर एक के बाद एक कई सवाल दागे।
डिमोनेटाइजेशन का लक्ष्य क्या था? देखिए, डर फैलाने का लक्ष्य एक ही है, गरीबों से उनका हक छीनना। पूरी हिस्ट्री में आप देख लीजिए, जहां भी डर फैलाया गया है वहां गरीबों से उनका हक, उनका पैसा, उनकी जमीन छीनी जाती है, और यही डिमोनेटाइजेशन का लक्ष्य।
चुनाव में पराजय का लगभग पर्याय बन चुकी कांग्रेस पार्टी अब 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए खुद को तैयार करने में जुटी है। इसी कड़ी में राहुल गांधी ने कहा कि वे भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से नफरत नहीं करते हैं, लेकिन वे उनकी विचारधारा को पराजित करके सत्ता से बाहर करके ही दम लेंगे। राहुल गांधी ने इसे दो विचारधाराओं की लड़ाई बताया है। राहुल गांधी के मुताबिक कांग्रेस कहती है डरो मत, जबकि भारतीय जनता पार्टी लोगों को डराने का काम कर रही है। इन तमाम आरोपों के जवाब में भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि राहुल गांधी एक पार्ट टाइम नेता हैं जो अभी अभी छुट्टी से लौटे हैं। यदि उन्हें वाकई लोगों की चिंता होती तो वे छुट्टी पर नहीं जाते।
नोटबंदी के मुद्दे पर कांग्रेस के जन वेदना सम्मेलन में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी मोदी सरकार के नोटबंदी के फैसले को गलत बता रहे हैं और जनता की तकलीफों का हवाला दे रहे हैं। हमारे सहयोगी संदीप सोनी ने वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश से बात की और पहला सवाल यही पूछा कि इस जन वेदना सम्मेलन में किसकी वेदना अधिक है, जनता की या कांग्रेस की?
जनता की जो मुसीबत या जनता की जो परेशानी नोटबंदी को लेकर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि लोग काफी परेशान रहे। लोगों ने कई जगह अपने तई प्रोटेस्ट भी किया, कुछ नाराजगी भी जाहिर की, लेकिन जिस तरह की दुर्दशा लोगों की थी, परेशानी थी, मुसीबत थी, उसके मुकाबले कोई प्रोटेस्ट, प्रतिरोध, विरोध प्रदर्शन या आक्रोश जो है सार्वजनिक स्तर पर दिखाई नहीं पड़ा। रही बात कांग्रेस की जो आप पूछ रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी में यह वेदना तो उनकी जरूर है कि चुनावी पराजय के बाद 2014 और इतनी सारी नीतिगत स्तर पर मौजूदा सरकार की विफलताएं, चाहे वो कश्मीर में हो, इंडो पाकिस्तान रिलेशंस के स्तर पर हो, महंगाई के स्तर पर हो, या जो आर्थिक विकास दर है उसकी हो, इन तमाम चीजों के बावजूद जो एक विपक्ष को राजनीतिक फायदा मिलना चाहिए था वो कांग्रेस को नहीं मिला, जबकि वो मुख्य विपक्षी पार्टी है। तो ऐसा नहीं कि कांग्रेस को पौने 3 सालों में कोई सहानुभूति की लहर उमड़ पड़ी हो कि भाई ये बुरा निजाम है, मौजूदा निजाम, और विपक्ष को ही लाओ। ये चीज जो नहीं है, मुझे लगता है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं उसको लेकर जरूर परेशान है। और तीसरी बात यह है, विपक्षी दल के रूप में कांग्रेस ने लोगों की मुसीबतों के दौरान, परेशानियों के दौरान, और जाहिर है वो अब भी हैं, उन्होंने कोई जनता के बीच बहुत काम तो किया नहीं। सम्मेलन करना, सेमिनार करना, गोष्ठी करना, भाषण देना अलग बात है, लेकिन लोगों के बीच जाकर दुख दर्द उनका शेयर करना या उनको ऑर्गेनाइज करना वो अलग बात है। तो कहीं ना कहीं एक अलगाव है जनता से और विपक्ष के बीच में, खासकर कांग्रेस के, ये बिल्कुल साफ दिखता है। क्योंकि नोटबंदी पर जो एक तेवर ममता बनर्जी ने दर्शाया या केरल में सीपीएम ने दिखाया, लेकिन कांग्रेस ने कुछ ऐसा नहीं किया। तो ये वेदना उनकी भी है कि उनको जनता अभी तक अपना भरपूर समर्थन नहीं देती नजर आ रही है।
चर्चाएं हमेशा की तरह फिर जोर पकड़ रही हैं कि कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी उनकी ताजपोशी होगी, उन्हें कांग्रेस अध्यक्ष का पद सौंप दिया जाएगा। आपको लगता है कि कुछ ऐसा होने पर कांग्रेस की दशा और दिशा में कुछ बदलाव आएगा, या बस ये एक ताजपोशी बनकर रह जाएगी?
देखिए, कांग्रेस पार्टी के जो अभी मौजूदा योजनाकार हैं, राजनीतिक योजनाकार, मुझे लगता है कि इस लाइन पर वो काम कर रहे हैं कि मौजूदा सरकार अपने काम काज से ही विफल साबित होती रहे और फिर एक दिन जनता कहे कि अब विकल्प तो फिर कांग्रेस ही है, इस तरह की बात सोच रहे हैं। जहां तक उपाध्यक्ष को प्रत्यक्ष बनाने का प्रश्न है, देखिए राहुल जी के बारे में पहले जो धारणाएं थी उसमें थोड़ी तब्दीली जरूर आई है, लेकिन अभी भी उनका जो कभी कुछ बहुत एक्टिव हो जाते हैं, कभी अचानक गायब हो जाते हैं, तो ये कांग्रेस को फील करना चाहिए कि उनका पाला एक ऐसे राजनेता से है जिसका नाम है नरेंद्र मोदी, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं। वो एक अलग ब्रांड के रूप में विकसित हुए हैं भारत की सियासत में, बहुत प्रभावशाली वक्ता हैं। तो आपको नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार का सामना करने के लिए उतना ही प्रोएक्टिव होना पड़ेगा, लेकिन कांग्रेस के उपाध्यक्ष की तरफ से अभी इस तरह की चीज दिख नहीं रही है। अब देखना यह है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में वो किस लाइन को लेकर उतरते हैं। कहा जा रहा है कि वो एक ब्रॉडर अलायंस की बात सोच रहे हैं, और अगर उनका ब्रॉडर अलायंस क्लिक करता है तो शायद कुछ गति मिले, लेकिन अभी तक मैं नहीं समझता कि राहुल गांधी जी कोई ऐसा राजनीतिक असर छोड़ पा रहे हैं जिससे लगे कि वो कांग्रेस अध्यक्ष कल सुबह हो जाएंगे तो कांग्रेस अचानक बदल जाएगी।
नोटबंदी के फैसले का विरोध करना कांग्रेस के लिए फायदेमंद होगा या नहीं चुनाव में, विश्लेषण कर रहे थे वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश। और आज दिल्ली से छपे अखबारों में क्या कुछ सुर्खियां बनी हैं, ये जानने के लिए चलते हैं दिलनवाज पाशा के पास, जो अखबारों का पुलिंदा लेकर स्टूडियो आ चुके हैं। जी दिलनवाज, बताइए।
जी, कल सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। दरअसल एक कथित डायरी को आधार बनाकर आरोप लगाया गया था कि मोदी और उन समेत उस समय के कई सहारा डायरीज कई नेताओं ने रिश्वत ली, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इन दावों को खारिज करते हुए सुनवाई से मना कर दिया है। ये खबर आज लगभग सभी अखबारों के पहले पन्ने पर है। इसके अलावा जो खास खबरें आज अखबारों में हैं, अब उन पर नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1978 में बीए पास किया दिल्ली यूनिवर्सिटी से। इस बारे में सूचना आयुक्त ने एमएस आचार्यालू जी ने इसकी जानकारी सार्वजनिक करने के लिए, जांच करने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी से कहा, और अब उनको ही उनके से प्रभार से हटा दिया गया है इस आदेश के दो दिन बाद। ये खबर आज के इंडियन एक्सप्रेस में है, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो डिग्री है उसको लेकर जो एक खबर आई थी कि अब ये जानकारी आ जाएगी, अब देखते हैं कि आ पाएगी या नहीं। इसके अलावा पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड समेत 5 राज्यों में चुनाव हैं। बात पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की जाए तो इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक इन तीनों ही प्रांतों में मनरेगा के तहत रोजगार के मामले बढ़े हैं और पिछले साल की तुलना में ये काफ़ी ज़्यादा हैं। इसके अलावा जिक्र जो है एक दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल नजीब जंग का कहना है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर आपराधिक मामला तक चल सकता है। शुंगलू समिति की रिपोर्ट की जो सिफारिशें हैं उनको आधार बनाते हुए इन्होंने ऐसा कहा है। और फिल्म अभिनेत्री विद्या बालन ने एक विवादित फिल्म में, मैं विवादित शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, नहीं करना चाहिए, लेकिन अखबार की रिपोर्ट के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि जो कट्टरपंथी, कथित कट्टरपंथी हैं, उनके डर से एक फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया है। ये कवित्री कमला दास के जीवन पर बनी थी।
बहुत शुक्रिया दिलनवाज पाशा अखबारों की इस विस्तृत समीक्षा के लिए। और अब बारी है दुनिया जहान की। भूमध्य सागर के सबसे बड़े आज़ाद द्वीप साइप्रस के एकीकरण के लिए नए सिरे से कोशिश शुरू हुई है। संयुक्त राष्ट्र के प्रयास से जिनेवा में ग्रीक और तुर्की वाले हिस्सों के नेता बातचीत कर रहे हैं। इरादा 4 दशक से जारी समस्या का समाधान तलाशने की है। इस बार दुनिया जहान में वात्सल्य राय ने इसी मुद्दे की पड़ताल की है।
दुनिया जहान। जो जमीन मोहब्बत की देवी की हो, वहां दिलों की दरार कब तक कायम रह सकती है। करीब 4 दशक पहले बंदूक के जोर पर साइप्रस को बांटने वाली जो लकीर खींची गई थी, उसे मिटाने की एक और कोशिश शुरू हो गई है। संयुक्त राष्ट्र के दूत एस्पेन बार्थ आयद इस कोशिश को ऐतिहासिक मौका बता रहे हैं।
If it succeeds, I think this is historic for the Cypriots. They have been trying अगर इसमें कामयाबी मिली तो मुझे लगता है कि साइप्रस के लोगों के लिए ये ऐतिहासिक होगा। वो कई पीढ़ियों से विभाजित द्वीप की समस्या के समाधान की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये भी सोचता हूँ कि दुनिया के जिन हिस्सों में संघर्ष जारी है वहाँ भी इससे बहुत मजबूत संदेश जाएगा।
संयुक्त राष्ट्र के दूत को जो उम्मीद है उसकी वजह भी है। ग्रीक हिस्से वाले साइप्रस के नेता निकोस एनेस्तासियादेस और तुर्की वाले हिस्से के नेता मुस्तफा अकिंची आज जो कोशिश कर रहे हैं उसके कई सदियों पहले से साइप्रस की हवाओं में यूनान की कथाएं घुली रही हैं। इन कथाओं में साइप्रस को मोहब्बत की देवी एफ्रोडाइट की जगह माना जाता है, लेकिन दुनिया भर के आशिकों को लुभाने वाला साइप्रस आखिर जब तक ताकत के जोर पर क्यों सम्मोहित होता रहा है? जानकारों के पास इसका भी जवाब है। ईसा पूर्व सिकंदर महान जब हिंदुस्तान की ओर बढ़े तो उनका एक पड़ाव साइप्रस भी था। दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और कई बार साइप्रस जा चुके आफताब कमाल पाशा कहते हैं,
सिकंदर ने भी अपने कब्जे में लिया था साइप्रस को ये कुछ अरसे के लिए। वो मिस्र में गए, शाम में गए, ईरान में आए, पंजाब तक आए।
लेकिन ये बात पुरानी है। बीते 400 साल का इतिहास तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य और साइप्रस के ब्रिटिश उपनिवेश बनने की कहानी सुनाता है। साइप्रस में भारत के उच्चायुक्त रह चुके जी पार्थ सारथी कहते हैं,
इसका इतिहास अजीब सा रहा है। इसके पास दो बड़े देश हैं, टर्की और ग्रीस। जो बहुमत के लोग हैं वो ग्रीक हैं, ईसाई हैं। करीबन 300 साल इसका शासन टर्की ने किया और उसके बाद अंग्रेज आए।
वक्त बदला। 1950 के दशक में ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ गुरिल्ला संघर्ष शुरू हुआ।
आजादी का जंग जो था, ग्रीक सिप्रियोट्स उस पर सबसे अहम हिस्सा लिया। दुनिया भर में लोग जानते हैं, आर्च बिशप मकारियस उनके नेता थे, भारत के बहुत ही निकट थे। दिल्ली में एक बड़ा रोड भी मोतीबाग के पास आर्च बिशप मकारियस रोड उनके नाम पर बनाया गया है।
साल 1960 में साइप्रस को आजादी मिल गई। शासन से बागडोर छोड़ने के बाद भी ब्रिटेन ने वहां दो हवाई अड्डे बरकरार रखे। इराक पर हमले के वक्त ब्रिटेन और अमरीकी विमानों ने इन अड्डों का इस्तेमाल किया था। साइप्रस को आजादी मिली, लेकिन इस द्वीप की दिक्कत खत्म नहीं हुई। एक नई दिक्कत शुरू हो गई। पार्थ सारथी बताते हैं,
दो समुदाय थे वहां, ग्रीक जो ईसाई है, तुर्क जो सुन्नी मुसलमान है। इन दोनों के बीच मतभेद गहरे रहे। जब आजादी मिला तब भी एक अच्छा संविधान नहीं बना। दोनों के बीच गृह युद्ध शुरू हुआ। ग्रीस ने अपने ग्रीक बरादरी को मदद की और टर्की ने टर्किश और मुसलमानों को मदद किया। टर्की ने हमला किया और इस पर कब्जा कर लिया। उसके बाद एक किस्म का विभाजन निकला। उत्तरी साइप्रस जो है वो टर्की के हाथ में, दक्षिण साइप्रस है वो ग्रीक के हाथ में।
विशेषज्ञों की राय है कि साल 1974 में तुर्की ने जब साइप्रस पर हमला किया उसमें अमेरिका का समर्थन भी था। साइप्रस के नेता आर्क बिशप मकारियोस गुट निरपेक्ष आंदोलन से जुड़े थे और अमेरिका उन्हें पसंद नहीं करता था। हमला करके तुर्की ने उत्तरी हिस्से पर कब्जा किया और तब से उसके करीब 30,000 सैनिक वहाँ तैनात है। बंटवारे में राजधानी निकोसिया भी दो हिस्सों में बट गई। बीच की ग्रीन लाइन पर संयुक्त राष्ट्र शांति सेना तैनात हो गई, जिसके सैनिक आज भी पेट्रोलिंग करते हैं। ग्रीस, तुर्की, सीरिया, लेबनन, इसराइल और मिस्र जैसे देशों के करीब इस द्वीप का एक तिहाई हिस्सा तुर्क मूल के लोगों के पास और दो तिहाई हिस्सा ग्रीक मूल के लोगों के पास है। साल 1983 में राउफ डेंगटाश ने तुर्की वाले हिस्से को टर्किश रिपब्लिक ऑफ नदन साइप्रस बनाने का ऐलान किया, लेकिन इसे तुर्की के अलावा किसी देश ने मान्यता नहीं दी। इस बीच ग्रीन लाइन को मिटाकर एकीकरण की कोशिश भी होती रही। साल 2004 में एकीकरण की कोशिश को तुर्की मूल के लोगों ने समर्थन दिया था, लेकिन ग्रीक मूल के लोगों ने इसे बहुमत के साथ खारिज कर दिया। ग्रीक हिस्से वाला साइप्रस साल 2004 में ही यूरोपीय संघ का हिस्सा बना। ग्रीस में आर्थिक संकट आया तो इसका असर साइप्रस पर भी हुआ। यूरोपीय संघ ने उसे बेलआउट पैकेज दिया। प्रोफेसर पाशा कहते हैं,
सबसे बड़ी प्रॉब्लम साइप्रस में यह है कि वहाँ पानी की किल्लत है। ग्राउंड वाटर और एक्सप्लॉयटेशन की वजह से वहाँ पानी नहीं है। नॉर्दर्न टर्की का प्रॉब्लम उन्होंने हल कर लिया कि पाइपलाइन डाल के टर्की से डायरेक्ट पानी उनके इलाके में ला रहे हैं। लोग परेशान हैं कि वहाँ कीमतें बढ़ते जा रहे हैं, पेट्रोल से लेके गैस से लेके। चूंकि यूरोपियन यूनियन में रिसेशन चल रहा है और ग्रीस के साथ उनका आर्थिक संबंध बहुत गहरा है, वहाँ की आर्थिक स्थिति का काफी इन पे इम्पैक्ट हुआ है।
कहते हैं कि विवाद बेवजह नहीं होते और दोस्ती भी बिना मतलब नहीं होती। साल 2015 में तुर्की के हिस्से वाले साइप्रस में मुस्तफा अकिंची ने शांति समझौते को आगे बढ़ाने के वादे के साथ चुनाव में जीत दर्ज की।
दूसरी तरफ साल 2013 में जीत हासिल करने वाले एनेस्तासियादेस ने भी मुस्तफा की जीत का स्वागत किया। दोनों पक्षों के बीच बातचीत भी शुरू हुई लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। भौगोलिक तौर पर अहम होने की वजह से संयुक्त राष्ट्र और दुनिया के दूसरे अहम देश भी चाहते हैं कि साइप्रस की समस्या जल्दी दूर हो जाए। जी पार्थ सारथी कहते हैं,
देखिए ये एक ऐसे जगह है जो इसराइल के पास है, इजिप्ट के पास है, सीरिया के पास है, लेबनान के पास है, ब्रिटेन के अड्डे हैं, वहाँ जो अमेरिकन हैं उनके भी निकट संबंध हैं, ग्रीक कई रूस के साथ अच्छे संबंध रखते हैं, तो कई महाशक्ति हैं जो इसमें दिलचस्पी लेते हैं। पिछले 6-8 साल में कहा जाता है कि सागर में बहुत ही बड़ा भंडार है प्राकृतिक गैस और तेल का, तो हर एक को यहाँ इंटरेस्ट है। 2004 को एक प्रारूप निकला समझौता के लिए, उस समय के महासचिव थे कोफी अनान, उन्होंने जो योजना बनाई वो उसको आप आगे ले जा रहे हैं और प्रयास संयुक्त राष्ट्र ये कर रहा है कि दोनों पक्षों को एकत्रित करके एक किस्म का फेडरेशन बनाए।
संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटरेश एकीकरण की कोशिश को ऐतिहासिक मौका बता रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये भी है कि नफरत की दीवार बनाना आसान है, उसे गिराना इतना आसान नहीं है। उम्मीदें हैं तो उसकी वजह है दोनों पक्षों की जरूरतें। प्रोफेसर पाशा कहते हैं,
इकोनॉमी इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस कर सकते हैं और टूरिज्म पे भी काफी लोग वहाँ जाने के लिए बेचैन है, रशियन वहाँ बड़ी तादाद में जाना चाहते हैं और जो देश गैस को एक्सप्लोर करना चाहते हैं जैसा टर्की है, लेबनान है, सीरिया है, इजिप्ट भी है, ये अभी पूरी तरह उसको एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं क्योंकि साइप्रस का मामला हल नहीं हुआ है, वो डरते हैं कि जंग छिड़ सकती है। अगर उनकी आर्थिक स्थिति इम्प्रूव होती है तो मेरे ख्याल से वो मिलजुल के रहने की कोशिश करेंगे क्योंकि दोनों का नुकसान हुआ है।
विभाजन की दीवार गिराने के लिए कई पेचीदा मुद्दों को हल करना जरूरी है। साल 1974 के हमले के वक्त ग्रीक मूल के लोगों ने जो संपत्ति छोड़ी थी उसके मुआवजे का सवाल, तुर्की के सैनिकों की वापसी की स्थिति में तुर्क मूल के लोगों की सुरक्षा का सवाल और सबसे बड़ा सवाल ऐसे समझौते की गारंटी कौन लेगा। पारसार्थी कहते हैं,
इस साइप्रस के कितना हिस्सा ग्रीक्स को जाएगा, कितना हिस्सा टर्क्स को जाएगा, बहुत ही पेचीदा समस्या है। तुर्की ये चाहता है अगर इस तरह का समझौता हुआ तो किसी भारी शक्ति को इसे गारंटी करना चाहिए, कौन करेगा, यूएन करेगा, यूरोपियन संघ करेगा, इन सब चीज पर एक किस्म का आम सहमति बनाना पड़ेगा।
सीरिया से आने वाले शरणार्थियों का संकट हल करने के लिए यूरोपीय संघ भी इस मामले को निपटाना चाहता है। हालांकि पहले चरण में दोनों पक्षों के नेताओं को सहमति कायम करने की कोशिश करनी है। अगर दोनों नेताओं की बातचीत में प्रगति हुई तो इसके बाद ब्रिटेन, ग्रीस और तुर्की के नेता बातचीत में शामिल हो सकते हैं। अगर सहमति बन सकी तो जनमत संग्रह होगा और उसका नतीजा ही साइप्रस में इतिहास का नया अध्याय रचेगा। तमाम बाधाओं के बीच उम्मीद की लौ लगातार रोशन है और इस बीच यूनानी किंवदंतियों की देवी एफ्रोडाइट की याद आ जाती है, तो क्या ये महज संयोग ही है? और जब मोहब्बत की देवी आशीर्वाद देने के लिए मौजूद हो तो अलगाव कब तक रहेगा? इस सवाल के जवाब का इंतजार पूरी दुनिया को है। वात्सल्य राय, BBC दिल्ली।
साइप्रस के एकीकरण के लिए नए सिरे से कोशिशें शुरू हुई हैं और इसी का विस्तार से ब्यौरा दे रहे थे वात्सल्य राय। और अब कार्यक्रम के आखिर में सुन लेते हैं प्रमुख समाचार एक बार फिर।
अमेरिका का राष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद से अपनी पहली प्रेस वार्ता में डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी खुफिया एजेंसियों और मीडिया पर निशाना साधा है। वहीं मैक्सिको के राष्ट्रपति एनरिके पेनानीटो ने फिर दोहराया है कि उनका देश अमेरिका और मैक्सिको के बीच राष्ट्रपति निर्वाचित डोनाल्ड ट्रंप की प्रस्तावित दीवार पर कोई खर्च नहीं करेगा। अमेरिका के विदेश मंत्री बनने के लिए डोनाल्ड ट्रंप की पसंद रेक्स टिलरसन ने सीनेट की अनुमोदन समिति के समक्ष सुनवाई में कहा है कि वो परमाणु प्रसार पर डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी का समर्थन नहीं करते हैं। ट्रंप ने कहा था कि जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों को अपनी रक्षा के लिए परमाणु हथियार विकसित करना गलत नहीं होगा। जर्मन कार निर्माता कंपनी फॉक्सवैगन ने अमेरिका में अपनी डीजल कारों में प्रदूषण का स्तर कम बताने के लिए अवैध सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करने का अपराध कबूल कर लिया है। भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन को तिरंगा के पावदान बेचने के लिए माफी मांगने के लिए कहा है। बीबीसी समाचार।
प्रमुख समाचार सुनाया दिलनवाज पाशा ने और आज स्टूडियो संभाला दीपक जसरूडिया ने। नमस्कार भारत में आज इतना ही। आपसे दिन भर में शाम 7:30 बजे फिर मुलाकात होगी। तब तक निखिल रंजन को दीजिए अनुमति और देखते रहिए bbchindi.com। नमस्कार।